नमः। सर्वप्रथम हम सबके मध्य में समुपस्थित परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमान भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज एवं परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमान भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में असंख्य कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित पूजनीय त्रिदंडी पादगण समस्त समुपस्थित वैष्णव वृंद समस्त सज्जनों माताएं बहनों सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हूँ। आज ये परम सौभाग्य का विषय है कि आज महानगरी इस इंद्रप्रस्थ में हम सभी लोग समुपस्थित हुए हैं। आज यह एक सुवर्ण सुयोग जो एक सौभाग्य का सु अवसर जहाँ एक महान सत्संग के बीच में एक महान पुरुष के श्री चरणों में बैठने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संसार में सुसंग कुसंग स्वर्ग नरक सब कुछ देखने को सुनने को मिलता है। अनेकों प्रकार के सुख भोग के लिए बहुत सामग्रियां मिल जाती हैं, परंतु संसार से पार लगाने के लिए जिन महान पुरुषों की अपार करुणा होती है आज उन्हीं के चरणों में हम समुपस्थित हैं। आपने सुना है शास्त्रों में हम लोगों को ऐसे सुनने को मिला है नायम आत्मा बल हिने न लभ्यते, दुर्बल चित्त कमजोर व्यक्ति कदापि भगवान को लाभ नहीं कर सकता। चाहे कितना ही चिल्ला चिल्ला करके माथा कूट कूट करके मर जाए भगवान की कृपा नहीं मिलती, कभी वे कृपा नहीं करते, उनकी कृपा की छाया में पहुंचना बड़ा कठिन काम है। परंतु कृपा तभी मिलती है यदि ये महान पुरुष संत पुरुष की कृपा मिल जाती है, उनकी छत्र छाया मिलती है, उनके चरण का आश्रय मिल जाता है, तब भगवान कभी कृपा करते हैं कभी नजर डालते हैं। आप जानते हैं सूरज सर्वत्र प्रकाश देते हैं, सूर्य की किरणें सर्वत्र फैलते हैं, सूर्य की किरणों में ताप है प्रकाश है, और आप जानते हैं सूर्य की किरणों के बिना कमल नहीं खिलता है। दिन का प्रकाश होने से ही तालाब में कमल खिलते हैं, पर कमल कहाँ खिलते हैं तालाब में, और जिस तालाब में पानी हो वहीं पर कमल खिलते हैं। आप जानते हैं दिन के प्रकाश से ही तो कमल खिलता है, परंतु यदि तालाब में पानी नहीं हो तो वो कमल क्या होगा, सूख जाएगा। वैसे ही हम लोगों का हृदय जो है कमल है, यह वेद से लेकर के श्रीमद् भागवत तक सभी शास्त्रों में वर्णन हुआ है। परंतु वह कमल तभी सूख जाता है, भगवान की कृपा तो सारे विश्व में है, सभी लोगों को कुछ न कुछ मिलता ही है। जब तक गुरु का आश्रय नहीं होता, गुरु की कृपा नहीं होती, वो गुरु की कृपा रूपी पानी जिस तालाब का सहारा मिलता है, यदि वो आश्रय मिले तब वो हृदय कमल खिल उठेगा और भगवान के चरणों तक पहुंच सकता है, अन्यथा पानी के अभाव में गुरु की कृपा के अभाव में क्या होता है, हृदय कमल भी सूख जाता है, भगवान के चरणों तक पहुंचना बड़ा कठिन काम। भगवान ने गीता में क्या कहा है, अर्जुन को क्या समझाया कि अर्जुन मनुष्यों के बीच में आज संसार में ऐसे कोई मनुष्य नहीं है जिनके पास कर्म नहीं हो, सभी लोग कर्म करते हैं, कौन ऐसे बुद्धिमान नहीं है, सबके पास कर्म जैसे कुछ न कुछ ज्ञान तो सबके ही होते हैं, समझदार तो सभी लोग हैं, ज्ञान है कर्म है सभी के पास, भावना किसी न किसी प्रकार से है, भक्ति तो सबको है, सभी लोग कहीं ना कहीं भक्ति करते हैं, परंतु अभाव किस बात का? योग का अभाव। जिस योग के अभाव में हमारा कर्म जीवन अधूरा है, हमारा ज्ञान बुद्धि विवेक सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो रहा है। हम भक्ति भगवत से भरपूर हैं, दुनिया में जहां तहां सर्वत्र सिर ठोकते हैं और दिन रात भर मिट रहे हैं, परंतु हमारा भक्ति किसी काम का नहीं हो रहा है। बोले क्यों? भगवान कृष्ण को हम भूल गए, उनको हम छोड़ दिए, उन्हीं से हम योगयुक्त नहीं हो पाए और संसार को हमने अपना जोड़ दिया, सारा नाता रिश्ता दुनिया भर के सभी को अपना बनाया, परंतु भगवान कृष्ण को दूर फेंक दिया। इसी कारण ही हमें संसार का भय उपस्थित हुआ, इसी कारण संसार का मोह हमें घेर लिया, संसार के जाला यातनाएं जंत्रणा सब कुछ हमें घेर लिया, और इसी कारण से हमारी बुद्धि बार बार बिगड़ती हुई भटक रही है। इस संसार में भटकने का वही काम हुआ कि हमने एक महान पुरुष सदगुरु का आश्रय नहीं किया, उनकी सेवा करने में हमारे अंदर हिचकिचाहट हुआ, हम भोगों की ओर आगे बढ़ते गए कि इस संसार को हम भोगेंगे, माया को भोग करने की जैसी प्रवृत्ति आई, माया ने हमारा कान पकड़ करके ढकल दिया, बोले जाओ इस संसार में, इस संसार रूपी कारागार में, इस जेल में पड़े रहो। जैसे जेल में जाने से पोशाक पहना देता है जेल की कैदी का पोशाक, उसी तरह से माया देवी ने हमारे ऊपर एक चोला डाल दी, हड्डी मांस खून रक्त मांस का ये चोला, और इसी को लेकर के हम नाच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम क्षत्रिय, हम शूद्र हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, हम गृहस्थी हैं, हम वानप्रस्थी, हम सन्यासी, अहंकार अभिमान में हम स्थित हैं डूबे के, और यही अहंकार अभिमान हमें संसार में ढकेला है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी जो कलयुग पावना बता रहे, सचिनंदन गौर हरि नवद्वीप नदिया में अवतीर्ण हुए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा न हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध, न हम पुरुष हैं, न हम नारी हैं, ना ही हम कोई ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी, हम कौन हैं? गोपियों के भटका भगवान श्री कृष्ण के दासों के दासों के अनुदास, हम अपने को भूल गए, भूल करके इस माया के संसार में इस चोले का अहंकार अभिमान एक झूठा अभिमान जो काल्पनिक और वास्तव है, क्योंकि ये शरीर हम नहीं है, फिर भी हम कह रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं इस शरीर का कि मैं शरीर हूं, कभी तो हम लोग नहीं कहते मैं शरीर, मैं सिर, मैं हाथ, मैं पैर, मेरा शरीर, तो मैं कौन हूं? इसको हम भूले, हम लोग नहीं जानते हम कौन। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा हम सभी श्री कृष्ण के दासों के अनुदास, उनकी सेवा करना ही हमारा कर्तव्य, उनको हम भूल करके संसार की सेवा में लग गए, और उस संसार की सेवा का परिणाम हमारे गांव पर स्वयं प्रत्येक व्यक्ति चाटा खा गए, खुद मार खा रहे हैं, पीट रहे हैं, बिल बिला रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, फिर भी चेतना नहीं हो रही है। भरत महाराज ने कहा महाराज इस भारतवर्ष के महाराजा रघुगण को सुनाया कि महाराज संसार के लोग घर छोड़ करके भाग रहे हैं, कोई तपस्या कर रहे हैं, कोई पहाड़ पर्वत की कंदराओं में बैठे हुए, कोई पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, कोई जंगल में पानी में खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं, कोई फलाहारी तो कोई पयोहारी बाबा बन रहे हैं, और कोई वेद का पाठ कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ में लगे हुए हैं, कोई जल की पूजा कर रहे हैं, कोई सूरज की, कोई देवी देवता की मनौती कर रहे हैं, क्या कल्याण हो जाएगा? और अब भी संभव इन सब से कभी कल्याण का मार्ग नहीं मिल सकता है जब तक बिना महत पाद रजो भी सीख, महान पुरुषों के चरण धूलि में जब तक अपने जीवन को अभिषेक नहीं करता, अपना मन प्राण हृदय समर्पित नहीं करता, ऐसे महान गुरु की सेवा नहीं करता, उनके आदेश निर्देश को जो नहीं मानता, तो कैसे कल्याण हो सकता है? कदापि संभव नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु करुणा करुणालय जीवों के प्रति अपार करुणा करके जिस महान प्रेम को देने के लिए इस जगत में आए। नमो महावदान नायक कृष्ण कृष्ण प्रेम प्रदायते, जो महा महावदान परम उदार श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं ब्रज विलास श्री कृष्ण भी स्वयं ब्रज का प्रेम भंडार लेकर के आए, ब्रज निकुंज में छिपा हुआ प्रेम भंडार उसी को उजाहर करके स्वयं उन्होंने आस्वादन किया, विश्व जीव को मिलाया दिखाया। अनर्पित चरिम चिराग करुणयावतीर्ण करो, जिस प्रेम को कभी उन्होंने दे नहीं सका और युवाओं में उन्होंने अस्त्र धारण किया, दुष्टों का दलन किया, एक तरफ से सबको संहार करते चले और भक्तों के साथ में भक्ति रस का आस्वादन किया, पर तो जिस प्रेम को देने की बात थी दे नहीं सके। कलयुग पावनावतारी श्री चैतन्य महाप्रभु उस परम उदार भाव से उस प्रेम को देने के लिए आए, जीवों के प्रति अपार करुणा करती है। समर्पित उन्नत उज्जवल रसाम सभक्ति स्वयं, जो रसिक शिखर ब्रज विलासी कृष्ण ब्रज में जिन्होंने लीलाएं की, जिस ब्रज प्रेम को ऊंचा करने के लिए संसार को दिखाने के लिए उन्होंने तरह तरह की लीलाएं की, मिलन और विप्रलंब विरह की, और उस महान प्रेम को दिखाते हुए उसकी शोभा माधुर्य को प्रकाशित कर दिया, उस शोभा उस माधुर्य का आस्वादन कर ले जीवों का हृदय सार्थक हो जाए। इस संसार के जड़ रस में मग्न हो करके यहाँ कुछ नहीं मिलने का है, ये संसार मरुभूमि है। श्रीमद् भागवत ने कहा है जिन्होंने पापी तापी दुराचारी बासंती जीवों के उद्धार के लिए एक ब्राह्मण के वचन को सत्य करके उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और सन्यासी बन करके जब चले तब कहा मोर प्राणनाथ मुरली वदन, कहा जाऊं कहा पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, कहरे कही वह कथा केवल जाने दूर, ब्रजेंद्र नंदन मेरा फट मोर बोल, महाप्रभु जी स्वयं राधा भाव में विभावित हो करके कहा मोर प्राणनाथ मुरली वदन, कहा जाऊं कहा पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, रोते हुए हाथ उठा करके चल रहे जो अपार करुणा करुणा लय नवते धाम में जिन जो कृपा नहीं की उससे अधिक कृपा के शांतिपुर में पहुंच गए। कृष्ण प्रेम हर यार दूर दरस ले, लाखों लाखों व्यक्ति दर्शन करने के लिए वहां से उपस्थित किए, जबकि उनका नाम सुनते ही उनका दर्शन करते ही सबका हृदय पिघलने लगा, सबको प्रेम दान किया। इसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु मायामृगम दैतेम शीतमंद भाव, जो करुणा पूर्वक समस्त जीवों के द्वार द्वार में गए, दोनों हाथ उठा करके बोले कि हे प्यारे भाइयों, इस संसार मरुभूमि में सभी लोग झुलस रहे हैं, जल रहे हैं, इस माया मृग मरीचिका में प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं जलती ही आग है। इस संसार के पद पर दौड़ करके कदापि कोई व्यक्ति शांति लाभ नहीं कर सकता है। हे प्यारे भाइयों, एक बार हमारे पास आ जाए, हम दोनों हाथ उठा करके वचन देते हैं, कृष्ण प्रेम रस भक्ति रस में आप स्नात हो जाए। इस भक्ति रस को देने के लिए जो महा महावदान परम करुणा करुणा लय ऐसे गुरुपाद पद्म रसिक वैष्णव जहां हमारे मध्य में उपस्थित, हम सबका दुर्भाग्य हम लोगों का अपराध पर हृदय जो हृदय काली प्राप्त है, जिस हृदय में मैल जमा हुआ है, बुद्धि मलिन है, हम समझ नहीं पा रहे, हम अभी भी पीछे हटे हुए हैं,
इसलिए
श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जो कि श्रीमद् भागवत में वर्णन हुआ है, माया मृगम दैते शित भंड भाव,
आप सभी लोग एक बार हाथ उठा करके बोले हरि बोल ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु
एक बार हरे नाम कहने से
उनके हृदय को परिवर्तन कर दिया।
कृष्ण धाम कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार,
अपराधी कृष्ण बल्ले नाहर विकार।
कृष्ण धाम कृष्ण नाम अपराध का विचार करता है, अपराधी व्यक्ति चाहे कितना ही कृष्ण नाम ले ले
हृदय पिघलता नहीं,
पाषाण हृदय बदलता नहीं, परंतु गौर नित्यानंद नामे नहीं, ये सब विचार
नाम लेते प्रेम देन वही अस्तु था।
एक बार यदि कोई व्यक्ति हा गौर हा नेता कह दे हे गौरांग महाप्रभु आप दया करें,
पाषाण हृदय भी पिघल जाता है,
कितना ही अपराधी हृदय फट जाता है।
ऐसे कर परम करुणा बोल
जब श्री चैतन्य महाप्रभु सच मां के आदेश से जगन्नाथपुरी को गए, महाभाग में विभावी
जगन्नाथ मंदिर के सामने मूर्छ होकर के गिर पड़े।
श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे अद्वैतवाद के विद्वान जिन्होंने महाप्रभु जी को उठा कर ले गए, ऐसे महान ऐसे महाभाव ऐसा तो कभी देखा नहीं गया किसी मनुष्यों में संभव देखे,
चमत्कृत हो गए।
महाप्रभु जी की कृपा करुणा श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा करुणा प्राप्त हुई, श्री महाप्रभु जी के सर्वभुज रूप का दर्शन किया,
तब उनके चरणों में झुक गए।
जिन्होंने वेदांत अद्वैत वेद के अद्वैत वेदांत के विद्वान बनकर सोहम सोहम किया, ब्रह्म ज्ञान में डूबे रहे, हृदय शुष्क पाषाण बना,
जिस हृदय में भक्ति का लेश भी उड़ गया, ऐसे हृदय को बदल दिया।
तो कर्म से ज्ञान से योग से और किसी साधना से नहीं,
जब गुरु की कृपा से हृदय भक्ति भाव से परिपूरित होता है तब उस भक्ति रस में स्नात होती। ऐसे महान पुरुषों की कृपा हो जाए,
श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा धारा में डूब जाए,
तब हमारा जीवन सार्थक होता है। इसलिए आज इस सुअवसर पर इन्हीं वक्तव्यों के साथ आज गुरु के चरणों में हम श्रद्धा पुष्पांजलि तथा सत सत नमन करते हैं।
आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, अधिक हम लोग समय नहीं लेंगे। अभी दो चार वक्ता हैं, ये 10-15 मिनट कुछ बोलेंगे और इसके बाद में कुछ मैं बोलूंगा। अभी श्रीमान भक्ति वेदांत अरण्य महाराज विल स्पीक समथिंग 10-15 मिनट। अरे सुनाओ, ठीक तो समझेंगे तो बॉम्बे वाले सभी अंग्रेजी में समझ लेते हैं और यार दिल्ली वाले नहीं समझेंगे।
ये गड़ी गांव है,
नहीं तो राजधानी है,
दिल्ली तो सेंट्रल है ना, यहाँ पर तो सभी ये सब लड़कियाँ हमारी शिक्षित हैं।
गौर प्रमानंदे
बोले
First of all, I have my Sastang Dandavat Pushpanjali, my heart thousands and thousands of times, at the lotus feet of Asmadi Paravaradhatama, Guru Pada Padma, Om Vishnu Pada Shtotra Sata Sisiman, Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I have my Sastang Dandavat Pranam thousands of times, at the lotus feet of my Sri Rupanuga Gaudiya Guru Varga, Sri Guru Parampara. And offer my pranam to my Pujaniya Gurujana, my worshipful superiors, Ananya Chidani Padagan, all disembodied sannyasis and all Vaishnavas and Vaishnavis. From Srimad Bhagavatam, there, we find it, the history of Brahmaji, Chaturmukh Brahmaji. At the very beginning of this creation, Brahmaji, he manifested four Vedas. In the Ved Shastra, all kinds of knowledge and understanding of this reality, this world in which we find ourselves. And Chaturmukh Brahma, being so intelligent, having vast intelligence, he began to study all the Vedas completely, four Vedas, with complete concentration. And then, having studied them, not once, he went through them all, and then again, a second time, then again, a third time. Actually, we have no opportunity to do this. The Vedashastra is so vast. If in our life we can read everything once, oh, it will be a great achievement. Yet still there's no guarantee that we can understand it. But Brahmaji, with his vast intelligence, he read through once, twice, three times. Then he came to a conclusion. His conclusion was, what is auspicious for the jiva? What actually brings about the complete cessation of all kinds of suffering, all kinds of problems, cessation of the endless chain of birth and death, and which brings real happiness and real peace forever? What can bring about auspiciousness? Only one thing. Shuddha bhakti, atma rati, deep attachment for the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. Nothing else. No karmas, no fruited activity, no gyan, not yoga, tapasya, nothing. Only the path of Shuddha Bhakti, by which the living entity can awaken his understanding of Atma Sarup. Who am I? I am this, not this physical body. In this world, all the jivas are moving in the endless chain of birth and death and identifying with the physical body. I am male or female, young, old, Indian, American, Japanese, European. But this idea is completely wrong, completely false. The true identity of the soul is that Atma is part and parcel of Krishna. Jivera Swarubhoi Krishna Nitya Das. Every living entity, every single living entity without exemption, is the eternal servant of Krishna. Ishvara Angsa Jiva Avinashi Chaitana Amala Sahaja Sukarasi. Tulsidas Ji Ramchait Manas, he explained, every single living entity is part and parcel of the Supreme Lord. But unfortunately, being bereft of this understanding, this knowledge, who am I? And what is my real responsibility in life? We are wandering in the endless chain of birth and death and undergoing so many different types of miseries and frustration. So, the only solution to all problems is to take to the path of Shuddha Bhakti, pure devotion. Yet, the living being, it is very difficult for him, not difficult, impossible. He cannot ascertain what is pure love, what is transcendental devotional service. Therefore, the Supreme Personality of Godhead,
they are not understanding, they are going twice speaks. So not on that.
Supreme Personality of Godhead is very kind. In order to help the living entity, he sends his very near and dear associate to this world. It's called Sadguru, Shri Guru. And in the form of Shri Guru, he gives shelter to everyone, guidance and affection, and teaches them gradually how to come into the path of pure bhakti, how to take shelter of Hari Nam, Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. And gradually, by the service of Sadguru, hearing Hare Katha from his lotus mouth and taking shelter of Hare Krishna Mahamantra, then the jiva comes to understand his constitutional identity, and then leaving this world goes back home, back to Godhead, to Goloka Vrindavan. There he finds eternal peace and happiness. So this is the only path. There is no other method. So those who they want to find out true auspiciousness and happiness and peace in their life, they must take shelter of the lotus feet of a Sadguru, Shuddha Vaishnava, receive Harinam Mahamantra and Diksha there, and gradually hearing, chanting, serving under his guidance, they can realize or the ultimate goal of life. So I'll not say any more. Many people don't understand. This is enough. With these words, I offer my Puspanjali at lotus feet of Srila Gurudev. Vancha Kalpakurva Statupas in the Gurudev Chapati Dharam Pavan in the Vaishnavi Guru.
गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय अदभक्ताय नमो। मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम पार्वत नाम विष्णु पार सुष्णु भक्ति का ज्ञान के सदस्य महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडक प्रणति पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। आदरणीय त्रिदंडी भागगण, वैष्णव वैष्णव सज्जन और माताएं, यथाजोग सभी लोग हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। संसार में सभी लोग सुख और शांति चाहते हैं। जगत में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो सुख और शांति नहीं चाहते। किंतु सुख चाहते हैं क्यों? क्योंकि सुख नहीं है तो क्यों नहीं चाहते? यदि सुख रहता तो कोई सुख नहीं चाहता। इसलिए हमें इस समय, यद्यपि हम अमृत के संतान हैं, किंतु सुख चाहते हैं क्योंकि
इस जगत में ऐसा कोई नहीं है जो संपूर्ण रूप से सुखी हो। कुछ कुछ सुख नहीं, ऐसा नहीं गोवे, ऐसा नहीं एकदम सुख नहीं है। सुख तो है वो जगत में, किंतु कैसा सुख है थोड़ी देर के बाद में समाप्त हो जाता है। उसमें पूर्ण सुख नहीं, फिर दुख आ जाता है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा सुख हो जिसमें फिर दुख मिश्रित न हो और निरंतर पैदुधारा मत विच्छिन्न गति से सुख ही सुख मिले, उसमें दुख का मिश्रण या छाया नहीं रहे। हम यही चाहते हैं, इसीलिए हम धन कमाते हैं, नौकरी करते हैं, चाकरी करते हैं, वाणिज्य व्यवसाय करते हैं, सभी कुछ करते हैं सुख और शांति के लिए। किंतु यह सुख और शांति का कभी भी प्रोसेस नहीं है, तरीका नहीं है। असल में सुख कौन है, सुख कहाँ है? हम लोग जो सुख खोज रहे हैं वो इस जगत में कहीं सुख नहीं। इस जगत की सृष्टि करने वालों का भी नियंता है, समस्त ईश्वरों का ईश्वर है, आनंदमयम ब्रह्म, वही विश्व का सृजन करने वालों का भी ईश्वर का ईश्वर आदि कारण है, वो है परब्रह्म। वह आनंद स्वरूप है, रस स्वरूप है, सुख स्वरूप। इस चीज को अच्छी तरह से हम उसी को खोज रहे हैं, किस जानते तो नहीं किंतु खोज रहे हैं किसको, जो सुख है उसको। वो सुख क्या है? वो ब्रह्म है, आनंदमय है, हम उसके पार्ट और पार्सल, हम उसके एक अणु परमाणु की भांति अंश है। अभी जिन परिस्थितियों में हम आए हैं, ये कारागार में आए हैं माया का, सभी हम सोचते हैं कि बहुत बुद्धिमान है, हमसे कोई बुद्धिमान है, श्रवण नहीं करना चाहते, दूसरों को सुनाना चाहते हैं सभी लोग, किंतु पहले श्रवण करने की जरूरत है, यही हमारे ऋषि महर्षियों ने बतलाया। तो हम किसी न किसी प्रकार से उस परब्रह्म को खोज रहे हैं, किंतु समझ नहीं रहे हैं कि हम उसको खोज रहे हैं। इसलिए आजकल आप लोग देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, हम समझते हैं कि हम अपने पूर्वजों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान पढ़े लिखे हो गए। पहले की महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी, इसलिए वो दुखी थी, किंतु आप अभी विचार करके देखिए, अपने जीवन के प्रारंभ में, जन्म में हमने देखा महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती, उनमें प्रेम भरा रहा, वात्सल्य भरा रहा। आज वो प्रेम कहां गया शिक्षित नारियों में? पहले के लोग हमने देखा है, अपढ़ स्त्रियां, अपढ़ पुरुष भी विवाह शादी करके बदल नहीं करते थे, डाइवोर्स नहीं करते, ये न जाने कहां की बीमारी आ गई पढ़े लिखे लोगों में। आजकल यदि कोई दुखी है सबसे अधिक, तो जगत में कहे जाने वाले बड़े बड़े राष्ट्र उसके नेता और बड़े बड़े पढ़े लिखे हुए लोग ही सबसे दुखी हैं। और जानते हैं संसार में सबसे बड़ा दुखी भयभीत डर को कौन है? अमेरिका का राष्ट्रपति महाशय बुश जी हैं कि बुश जी हैं, उनको सभी से भय लगता है। क्यों भय लगता है? सबसे शक्तिशाली हैं, उन्होंने एटम बम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, न जाने क्या क्या बम बनाया, फिर उनको डर किस लिए? यही पर तो भय है। किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी शक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा नहीं। इसलिए समझिए, इसके द्वारा हमारा कल्याण और सुख और शांति नहीं मिलेगी। तो हम लोग खोज रहे हैं,
अनजान में ही हम समझते हैं मांस मछली प्याज लहसुन अंडे इत्यादि खाने से हमें सुख होता है, उसी को दे करके किसी का चित्त खराब हो जाता है। इसी तरह से हम जिसको सुख समझते हैं वो सुख नहीं है, जिसको हम आनंद समझते हैं आनंद नहीं है। इसलिए कहां सुख है कहां आनंद है हमारे शास्त्रकारों ने बताया। आज से करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले जबकि पहली सृष्टि में उसी समय में हमारे ऋषि महर्षियों ने इस सत्य की उपलब्धि की। हम जाने और न जाने उस परब्रह्म के अंश हैं। वो जानते हैं परब्रह्म कौन है, अभी मथुरा वृंदावन में जन्म लिया, लोगों के घरों में मक्खन खाया, चोरी किया मक्खन, और न जाने कितने बार झूठ बोले और महाभारत के युद्ध में क्या किया। महाभारत जैसा बैटल ये अभी नहीं है, उसमें कितने लोग मारे गए कितने लोग क्या हुए, धर्म की स्थापना की, इसके बाद में भागवत का प्रकाश हुआ। भागवत ने वाणी दी, देखो तुम क्या भगवान को खोजो, तुम उसकी क्या भक्ति करोगे भजन करोगे। वो इतना बड़ा दयालु है, इतना बड़ा दयालु है, कंवा दयालु शरणम व्रजेयु, उतना उनको मारने के लिए दूध में स्तन में दूध के बदले में 20 लाख कारुकुट मारने के लिए, और उसको गुरु वृंदावन में कहा माता जैसी गति देगी। ऐसा कौन रुधिर पान करने वाली, बच्चों को चबा जाने वाली, रक्त पान करने वाली, या छोटे छोटे बच्चे किशोर छोटे छोटे बच्चों को देखा चबा गए, ऐसे कृष्ण को मारने के लिए आई और उसको माता की गति देगी। तो वो परब्रह्म आनंद सुख और प्रेम की मूर्ति कृपा करके जगत में आया हमारे पास, हम उसको क्या खोज सकते हैं। बैठ ले, तो हम उसको क्या खोज सकते हैं। देखो वो छोटा सा ग्वालिया बना हुआ बच्चों के साथ में खेल कर रहा है, उनके साथ में लड़ाई भी लड़ लेता है, पराजित होकर के बड़ा आनंदित होता है। पर ब्रह्मा जी ने बछड़े हर लिए, कुछ और भगवान की लीलाएं देखेंगे उस पर ब्रह्म प्रेम प्रभु का, हर लिए बछड़े और फिर सखाओं को भी हरण करके कंदरा में पहाड़ की कंदरा में लगा दिया। कृष्ण क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं ना, सब जगह में ढूंढ रहे हैं, ऐसे हमको ढूंढते हैं हम क्या उनको ढूंढेंगे। ये भागवत का विचार है, समस्त भागवत शास्त्र में वेद उपनिषद शास्त्र जितने भी पुराण शास्त्र हैं, जो भागवत नहीं मानता, गीता को नहीं मानता, रामायण को नहीं मानते, विशेष करके भागवत के विचारों पर नहीं चलते, वो जितने भी धार्मिक हो उनको दूर से प्रणाम करें। कोई भी वक्ता है उसकी बात नहीं सुननी है, जो अपनी बात गीता भागवत रामायण इत्यादि के ऊपर में निर्भर रह करके जो बतलाते हैं वो तो ठीक है, भगवान की भक्ति करना ठीक है, मैं ही ब्रह्मा हूं उनकी बात नहीं सुन। तो वो ब्रह्मन उतर करके खोज रहा है बतलाओ तो वो हमको ढूंढ रहा है। देखो रासलीला आरंभ हुई, जगौ कलम बाम मनोहर, उन्होंने बंसी पर अपनी तान छेड़ दी। तान क्या छेड़ी, अपने हृदय का जितना प्रेम था उड़ेल दिया, किंतु उसको सुना कौन? और ब्रजवासियों ने नहीं सुना, जगत में वो सर्वत्र व्याप्त हो गई किंतु किसी ने नहीं सुना, जो सोदा मैया और नंद बाबा ने भी नहीं सुना, कौन सुना? बस वो ब्रज रमणिया सुनी, और वो कृष्ण के पास में दौड़ी आई, किंतु पुकारा किसने, बुलाया किसने? कृष्ण ने अपनी बंसी से खेल पर उनको बुलाया, हमें भी बुला रहे हैं, बंसी बज रही है, बंसी कभी बंद नहीं होती, किंतु सुनने के लिए कान चाहिए। कृष्ण मर गए नहीं, वृंदावन लुप्त नहीं हो गया, आज भी वृंदावन में वो लीलाएं कर रहे हैं, वृंदावन छोड़ करके कभी नहीं इधर भर गया, उनकी प्रियाएं भी ब्रजंगनाएं भी ब्रज छोड़ करके कहीं नहीं जाती, अभी भी वहां पर लीला चल रही है, किंतु माया ने हमारे आंखों पर पर्दा डाल दिया, कानों पर पर्दा डाल दिया है, जिसे कि हम सुन नहीं पाते, किंतु साधु गुरु वैष्णव का अनुगत स्वीकार करके उनसे यह तरीका जानने के लिए प्रोसेस जानकर कृष्ण से संबंध रखकर यदि हम करेंगे, उनको उनकी पुकार हम सुन सकते हैं। कैसे प्रेमी है देखो तो, कैसे प्रेमी है, गोपियों से वो क्षमा मांगते हैं, कहा करके क्षमा मांगते हैं, ओहो तुम लोगों ने हमसे जैसा निर्मल और शुद्ध प्रेम किया है, मैं इसका ऋण कभी भी नहीं चुका सकता, न पारे हम निर्भर नहीं चुका। जब कृष्ण अपनी हलाद्री शक्ति के विरह में कातर हो गए और उन्होंने मान कर लिया दुर्जय, तो कृष्ण के मनाने पर भी, ला करने पर भी, बंसी की आवाज करने पर भी वो मानी नहीं, नहीं मानी तो उन्होंने क्या कहा, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पद पल्लम, क्या कहते हैं, कहते हैं स्मर गरल खंडन, तुम्हारा विरह हमारे लिए विष है, मैं जला जा रहा, आप कृपा करके हमें क्षमा कीजिए, अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कि आप अप्रसन्न हो, क्षमा मांगने लगे और कहीं अपने चरणों की को हमारे सिर पर रख करके उसको मेरा अलंकार सिरका बनाए। कौन कह रहा है, राम नहीं कर सकते, नृसिंह भगवान नहीं कर सकते, परब्रह्म तो आएगा ही नहीं क्योंकि उसका रूप ही नहीं, वो नहीं आएगा सोहम वाला, वो तो बहुत दूर, तो ये कौन कह रहा है, विश्व सृष्टि स्थिति प्रलय करने वालों का भी जो मूल है वो परब्रह्म साक्षात, ये कृष्ण कह रहे हैं गोपियों से, ऐसे वो प्रेमी है, ऐसे प्रेमी को छोड़ करके किसका भजन करेंगे, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। कैसे करेंगे, बिना सद्गुरु का नहीं होगा, नहीं कर सकता, तुलसीदास भी कहते हैं, सारे शास्त्र कहते हैं, किंतु गुरु कैसा हो, परम ब्रह्म की अनुभूति वाला, संसार से अनाशक्त, रुपया पैसा पदमर ज्यादा क्यों नहीं चाहने वाला, और भगवत तत्व जानने वाला, शास्त्रों का विचार जानने वाला, और दूसरों के शंकाओं को दूर कर सके, ऐसा गुरु, इतना होने पर भी भगवत अनुभूति नहीं है, जिसमें नाम भगवान के नाम में रुचि नहीं है, प्रीति नहीं है, कलयुग केवल नाम आधार, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, वही मतलब कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते गति, गति नहीं है, नहीं तो जो खुद नहीं हरि नाम का उपदेश नहीं करता, जो नाम का उपदेश नहीं करता कृष्ण नाम, वो जितना भी बड़ा विद्वान सब कुछ हो उसे बहुत दूर प्रणाम करते हैं। जो हरि नाम में रुचि रखता हो, भागवत की बातों पर चलता हो, सबके प्रति दया हो, अपने लिए कोई भी स्वार्थी न हो, स्वार्थ न हो जागृति, धन इत्यादि से वैराग्य, काम से वैराग्य, ये सब गुण हो, ऐसा गुरु हमको कुछ मार्गदर्शन कर सकता है, वो कृष्ण के संबंध में कुछ बतला सकता है। इसलिए वो दीक्षा के माध्यम से ये दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, फिर उसको संसार से आसक्ति नहीं रहती। जिस व्यक्ति को हरि नाम सुनते 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 हजार वर्ष हो गए, हरि कथा कह रहा है, हरि कथा सुन रहा है, कह रहा है, सब कुछ कर रहा है, नाम भी कर रहा है, किंतु संसार से विरक्ति नहीं हुई, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, और कृष्ण का तत्व ज्ञान नहीं हुआ, तो समझो उसके भजन में कुछ गड़बड़ी है, जरूर गड़बड़ी। एक लड़के की शादी थी, मथुरा का लड़का, दिल्ली में उसकी शादी होने वाली, बहुत पुराने जमाने की बात, और उस समय में नौकाएं चलती थी, कार गाड़ी इत्यादि नहीं थी, या तो बैलगाड़ी थी, नौका थी, यही सब जान बहान के उपाय। तो ठीक हुआ कि एक बड़ी नौका में बारात जाएगी और सवेरे 4 बजे के पहले पहुंच करके वरवधु का विवाह संपन्न होगा। बड़ी सुंदर नौका ली गई और नौका के भीतर में बड़ा सुंदर महफिल जमा, उसमें वर्ष और समधि और सब लोग उसमें बैठे, और दवा दारू का भी काम चलने लगा, और उन्होंने बोट वालों को कहा कि जल्दी से ले चलना, सवेरे 4 बजे हमारी शादी है, और जहां से बारात जाने वाली थी वहां घाट था विश्राम घाट। तो नौका चली, उन्होंने कहा कि भाई हमको थोड़ा सा गांजा चाहिए और भांग चाहिए, तब तो हम रात भर परिश्रम कर सकेंगे। तो उन्हें ठीक है, उस उनको चरस गांजा भांग जो कुछ चाहिए सब दे दिया, वो खा पी करके मस्त होकर के चलाने लगे। रात भर नौका चलाया, जब 4 बज गया तो बर का पिता नौका के ऊपर में उतर के देखा, अरे हम तो विश्राम घाट पर ही अभी हैं। अरे तुम लोगों ने नौका नहीं चलाया, अभी दिल्ली पहुंचना था तो सवेरे शादी कैसे होगी, तुम ना सब मट्टी कर। अरे बाबू जी देखिए ना, हम अभी थके हुए परिश्रम से पसीने से तरबर हो रहे हैं और नौका चलाई तो ये अभी तो किंतु ठीक ही करे, विश्राम घाट पर नौका है। अरे देखो तो तुमने नंगर उठाया कि नहीं, नंगर जानते हैं, नौका चलाने पर उसको रखने के लिए दायरे पर घाट में जो इधर उधर न हो, वो लोहे का वो ऐसा होता है जो कि डाल देते हैं। तो नंगर उठाया नहीं, नौका चला रहे, नौका उसी के चारों तरफ में घूम रही। आप भजन करो, साधन करो, सब कुछ करो, और ये संसारिक आसक्ति में ये प्रवी हुई है नंगर, नौका आगे नहीं बढ़ेगी। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया अन्ना अभिशाषिता समूह, ज्ञान कर्मात् गणाभूतम आनुकुल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। भक्ति साधारण चीज नहीं है। कुछ लोग माता की भक्ति, पिता की भक्ति, देश भक्ति और क्या, पति की भक्ति, स्त्री की भक्ति,
भक्ति मातृ भक्ति,
और ये सब शंकर जी की भक्ति, गणेश जी की भक्ति, दुर्गा काली इत्यादि की भक्ति कहते हैं। किंतु यहां पर व्यवहार गलत है। भक्ति भगवान की होनी चाहिए, दूसरों पर पिता माता पर भक्ति का प्रयोग करते हैं ये आंतरिक रूप से नहीं होता है, व्यवहारिक नहीं, यथार्थ। कृष्ण या राम भगवान है, इनके प्रति यदि भक्ति होगी तो यह भक्ति कहा जाएगी। गुरु से संबंधित है, गुरु के प्रति होने से भी भगवत भक्ति होगी। शंकर जी को गुरु मानकर के उनके प्रति भक्ति होगी तो यह होगी। किंतु रावण, जरासंध, कंस, भस्मासुर और दूसरे वर्षे दैत्य लोग शंकर जी की तो भक्ति करते हैं, क्या होता है, भगवान के हाथों से मरते हैं, इसे भक्ति नहीं है। वो तामसिक रूप में कहते हैं, शास्त्रीय नहीं है। किसको कहते हैं थोड़ा संक्षेप में बतलाते हैं। जब अन्य अभिलाषिता से, जब अपने तन से, मन से, वचन से, इसके अतीत भावना से, आत्मा से संपूर्ण रूप से, तय धारावाते विच्छिन्न गति से जब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो इसको भक्ति कहते हैं। क्या कहा मैंने, जब तन से, स्त्री पुरुष का, सन्यासी और गृहस्थ का कोई भेद नहीं, मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन ईसाई का भी भेद नहीं, सबके लिए एक ही डिविशन है। हमारा आराध्य देव कौन है, प्रेम है। कृष्ण स्वयं है प्रेम, तो इसको पाने का उपाय क्या, इसी को बतला रहे। जब तन से, मन से, वचन से, हमारी भावनाओं से, इसका अतिरिक्त आत्मा से, जबकि अभिच्छिन्न गति से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही कृष्ण की भक्ति होती है तो इसको भक्ति कहते हैं। इसमें और एक कहा गया, अनुकूलेन कृष्णानुशीलन, कृष्ण की प्रसन्नता ही भक्ति नहीं है, इसमें व्याप्ति और व्याप्ति का दोष है। सरल शब्दों में ये दोष है, कृष्ण को रुलाना भक्ति है कि नहीं, यही पर कुछ समझने की बात। यहां पर अव्यक्ति मालूम होता है। यशोदा जी कृष्ण को मारती हैं, मारती नहीं, रखिया दिखलाती हैं, बांध देती हैं ओखल से और बेंत दिखलाती हैं, मारूं, हाथ पकड़कर कृष्ण रो रहे हैं, तो कृष्ण को रुलाना भक्ति है, रुलाना भक्ति नहीं है। किंतु ये देखा जाता है कि वो जो बांध रहा है, कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है। कृष्ण पीछे ऐसा बिगड़ न जाए हमारा बेटा, चाहे ब्रह्म हो चाहे जो हो, इसकी आदत खराब न हो, घर घर में चोरी न करे, घर में मक्खन जमाती है स्वयं और वो मटकी को फोड़ देता है और कुछ बंदर बंधु का कार्य करता है, इसलिए लठिया लेकर के उसको शासन कर रही है परब्रह्म को। वो परब्रह्म जो कोई हो, हमारा बेटा अभी है, अभी इसको शिक्षा दे। उद्देश्य क्या, शिक्षा दे। कहती है इसी तरह से यहां पर उलाना उनका उद्देश्य नहीं, उनकी सेवा उद्देश्य है। कृष्ण अपना कपड़ा गंदा कर लिया, यशोदा माँ पी करें, अब हम गोदी में नहीं, दूध नहीं, और कृष्ण मचल रहे हैं, रो रहे हैं, मिट्टी में मिल रहे हैं, तो ये मालूम होता है भक्त में। किंतु यही भक्ति है, चारों मुष्टिक से कृष्ण लड़ रहे हैं और उनको बड़ा आनंद आ रहा है, चार मूर्ति किस लिए लड़ा? कृष्ण को मारने के लिए। किंतु कृष्ण को आज वीर रस आस्वादन हो रहा है, ये भक्ति नहीं है कृष्ण का प्रसन्न होना। कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं यद्यपि, किंतु उसका उद्देश्य है मारना। इसको इस रूप में समझिए। और संसार की कोई भी अभिलाषा संसारिक न हो, अपने स्वार्थ के लिए परमार्थिक भी कोई इच्छा न हो, और हमारी भक्ति ज्ञान ज्ञान कर्म योग तपस्या के अधीन न हो। इस चीज को थोड़ा सा अच्छी तरह से समझने के लिए और एक उदाहरण देकर के बतला। रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी राम के साथ में वनवास में गए। घूमते घामते चित्रकूट में पहुंचे। भरत शत्रुघ्न निहाल में थे, आए सुना। उन्होंने कहा कि मैं राज्यपद नहीं हूं। वशिष्ठ जी ने समझाया, सबने राम को मनाने के लिए चले। राम भैया ही यहां का मालिक है, मैं उसका दास हूं। उनके साथ सारी अयोध्या के लोग गए, बड़े बुजुर्ग लोग, कुछ बड़े बूढ़े थर गए और बाकी सब उनके साथ, सारी सेनाएं, तीनों माताएं भी गई। चित्रकूट में पहुंचे। पहले दिन तो थोड़ा सा मिलन हुआ, दूसरे दिन उनको मालूम पड़ा जी महाराज दशरथ सिधार गए हैं। राम राम हाराम कह पुत्र के विरह। फिर उनको रामचंद्र जी ने उनको पिंडदान किए। और इसके बाद में सभा बैठी, किस लिए भरत आए? उसके पहले महाराज जनक भी आए हैं, वशिष्ठ इत्यादि बड़े गुरुजन गए हैं, बड़े ऋषि महर्षि लोग सब जुटे हैं उस सभा में। रात में भरत जी गया अपनी कौशल्या मैया के पास। मैया, देखो मैं जानता हूं तुम आदेश दे देगी तो राम अभी लौट जाएंगे, तो तुम राम को आदेश दो, ये भरत आया है और आपको ले चलना चाहता है अयोध्या में, तुम लौट जाओ। उन्होंने कहा जी मैं कैसे कहूं, वो भी तो धर्म पथ पर अड़ी गए, उसको अधर्म करने के लिए कहूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर क्या मैं अन्याय कर रहा हूं उनको जाने के? नहीं, तुम न्याय कर रहे हो, तुम्हारे तरफ से ठीक है, किंतु मैं ऐसा कह नहीं सकता। जब राम तुम अपना पिताजी का आदेश छोड़ करके चले, तो आप भी तो मैया है, मैं मैया हूं, किंतु मैया और बाप दोनों का आदेश लेकर के गया, इसलिए तेरे मेरे कहने से नहीं। निराश होकर के वशिष्ठ जी के यहां गए। बोले गुरुदेव, राम आपकी बात टाल नहीं सकता है, इसलिए आपका दी अयोध्या लौट जाए और राज्य अभिषेक करा ले, हम अभिषेक का सब सामग्री लेकर। वशिष्ठ जी बोलिए देखो एक बात है, वो तो ऐसे नहीं लौटेगा, तुम उसके प्रतिनिधि होकर के तुम बन जंगल में यदि जाओ तो वो लौट सकता है, ऐसा हो सकता है, मैं कहूंगा, प्रस्ताव दूंगा, तो ठीक है मैं जाने के लिए तैयार। किंतु राम इसके लिए तैयार नहीं होंगे, भरत वो जानते थे। उन्होंने कहा जी मैं उसे अधर्म करने के लिए नहीं, तो मैं गलत कर रहा? मैंने तुम भी ठीक कर। सुनैना जी के पास गए, जैसे जरा जनक जी को कह देना, वही सभा का गाइड करेंगे और वही निर्णय देंगे। ठीक है, उन्होंने उनसे कहा सीता पर ख्याल रखना, तुम्हारी सुकुमार सीता बनवन में डोलेगी, राक्षस सब आएंगे, उत्पात करेंगे, तुमको ये अच्छा लगेगा, इसलिए कह देना ही उचित है जो लौट जाए। जनक जी ने कहा जो कमाएंगे भगवान वही कहूंगा। फिर दूसरे तीसरे दिन सभा जुटी और सभा में ऋषि लोग एक तरफ में बैठे, एक तरफ में रामचंद्र जी बैठे, लक्ष्मण सीता, और एक तरफ में अयोध्या पुरवासी माताएं और सब भरत लोग बैठे। वशिष्ठ जी ने कहा रघुकुल पर बड़ी भारी विपत्ति आई है, कोई भी समझाने वाला नहीं है इसको, क्या करना चाहिए और नहीं। अब आप ही इनके पिता हैं, गुरु हैं, भाई हैं, जो कुछ बंधु हैं, महाराज जनक आप तो वेदों के शास्त्रों के सब कुछ जानने वाले हैं, तो आप इनको कुछ बतलाइए जिससे कि इनका कल्याण हो। आप जो निर्देश देंगे ये दोनों भाई मानेंगे, भक्त भी मानेगा और राम भी मानेगा। उन्होंने कहा जी अच्छी बात है, बस अपने गुरु का ध्यान किया और ध्यान करके बोले देखो मैं देखता हूं भरत का प्रेम है वो प्रशांत महासागर है, इतना बड़ा सागर है, इतना डीप गहरा है कि एवरेस्ट माउंटेन 7 मील प्राय लंबा ऊंचा, वो डूब जाएगा उसमें। भरत का प्रेम महासागर है, प्रेम कोई नियम नहीं जानता, कोई नीति के मेच में वो आबद्ध नहीं रहता, तो ये भरत का प्रेम है। और उधर राम क्या है, वो है एवरेस्ट माउंटेन, उसमें डूब जाएगा किंतु स्पष्ट समझ इधर नहीं होगा। समझ रहे हैं, प्रेम की महिमा अधिक है, डूब जाएगा उसमें किंतु फिर भी तस मस नहीं होगा हिमालय। देखो मेरी विचार, मेरा विचार यह है कि भरत की जीत हुई और राम इसमें डूब गए, किंतु इसका मतलब और समझो कुछ। भरत का प्रेम ऐसा प्रेम में ये नीति है कि अनीति है ये नहीं देखता। गोपियों से नारद से कहा जाए नारद जी अपने चरण की धूली दे दीजिए, द्वारकाधीश जरा बीमार हैं वो ठीक हो जाए, देंगे और मैं नर्क में नहीं जाने। सत्यभामा रुक्मिणी किसी ने नहीं दिया, और ब्रज में आए गोपियों से कहा कृष्ण की अवस्था ठीक नहीं है और स्वस्थ हैं, वो किसी भक्त की चरण भूली जाए। साफ जितनी करोड़ों गोपी अपने पैरों को झाड़ झाड़ करके देखो नीति कहां गई, ये नीति प्रेम में नहीं होती। राधिका जी अपने चरणों में महावर लिखवाती हैं कृष्ण से, कृष्ण कृष्ण, और उसकी छाप राधा जी अपने पैरों की छाप कृष्ण पर ब्रह्म के ईश में देते हैं और कहती हैं क्या गोपियां धोत बाहर काला भीतर काला, लंपट शिरोमणि झूठ और चोर शिरोमणि, मतलब ऐसे कोई ब्रह्म को कहेगा, यहां का नीति है प्रेम में नीति नहीं। तो भक्त का प्रेम ऐसा महासागर है प्रेम का, उसमें राम की नीति और धर्म की नीति डूब जाए, मर्यादा डूब जाएगी, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, और कृष्ण है क्या लीला पुरुषोत्तम, इनकी माधुरी अलग विचित्र है। तो ठीक, तो वहां भरत की जीत हुई किंतु जीत तो हुई किंतु प्रेम की भी मर्यादा है। क्या प्रेम में ये मर्यादा है कि जो आराधक है वो अपने आराध्य इष्ट वस्तु को किसमें प्रसन्नता हुआ वही काम करेगा। आया समझ में, भरत जी इष्ट आराधक हैं, उनको मनाने के लिए है, भक्त हैं, और भक्त का इष्ट देव कौन है, यहां पर राम है। तुम भरत जी जाकर के उनसे पूछो राम क्या चाहते हैं, किसमें प्रसन्न होंगे, ये भक्ति है। तुम अपने विचार से कर रहे हो या रामचंद्र जी जाएंगे तो हमें सुख होगा, प्रजाओं को सुख होगा, इसमें राम को सुख होगा कि नहीं, ये भक्ति है। भरत जी की आंखें खुल गई, वो महाराज जनक के चरणों में गिर गए, आप मेरे गुरु हैं, मेरी आंखें खुल गई, अब तक मैं अंधा था, प्रेम में अंधा था, अब मैं समझा ये इष्ट देव किस विषय में सुखी रहते हैं, ये भक्ति है, मैंने ये देखा नहीं था, मैं अपना सुख स्वार्थ देखता कि इसमें भगवान प्रसन्न होंगे, राम प्रसन्न होंगे, किंतु वो होंगे कि नहीं ये विचार नहीं। जाओ राम से पूछो राम क्या चाहते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, देखो भरत हमारे जनक जी ने तो ये कह ही दिया कि तुम्हारी जीत हुई, लोग बड़े प्रसन्न हुए, किंतु कहते हैं कि देखो मैंने राज्य ले लिया, हमारा अभिषेक हमने ले लिया, अयोध्या का मैं राजा ऐसे हूं, एक बात करनी होगी तुम्हें, तुम जाओ हमारे प्रतिनिधि होकर के 14 वर्ष तक राज संभाल करके देखो, मेरे प्रतिनिधि होकर के मैं राजा हूं किंतु पर, और मैं 14 वर्ष के बाद एक सेकंड की दूरी नहीं करके आ जाऊंगा। अजय ठीक, मैं प्रतिनिधि होकर के, एक मिनट की विलंब हो गई यदि तो अयोध्या में हमको तुम नहीं देख, मैं जल मरूंगा। अजय ठीक कह जाओ, इसलिए भक्ति क्या है समझो, शंकर जी का ये बजा
चौकट
दबाते हैं, इसलिए एक से मैं 1.5 किलो लड्डू आपको भोग दूंगा, हमारे बेटा वो करोड़ दूर हो जाए, वो मिस्टर इंडिया हो जाए, हमारी लड़की मिस यूनिवर्स हो जाए, हमारा ये दुख दारिद्र दूर हो जाए, ये भक्ति नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही भगवान की भक्ति होनी चाहिए, तभी ये भक्ति होगी। इसलिए भगवान का नाम संकीर्तन करो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण कृष्ण कहो राधा जी को प्रसन्न करने के लिए। और ये राम राम किसके लिए, ये मत सोचो ये अलग अलग नाम है, कृष्ण के ये सभी नाम है, हरे माने समझो जो कृष्ण के भी चित्त को हरण करने वाले, राम माने राधा जी के हृदय में रमण करने वाले, वहां पर दासत्वी नाम नहीं हूं। इसलिए ये सब विचार करके एकनिष्ठ होकर के भजन करो, तुम लोगों का सबका कल्याण, वो समय बहुत बीत चुका है, इसलिए आज पहले तभी समाप्त करता हूँ। भगवान का नाम हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। दिन में रात में सवेरे शाम दोपहर को भोजन करके न भोजन करके चलते फिरते उठते बैठते बिना माला का भी कुछ स्वर से धीरे सर से गान के रूप में ताली बजाते हुए जैसे हो नाम। इसलिए हाँ एक बात है, प्याज लहसुन मांस मछली मत खाना, ये तामसिक चीजें हैं, इनसे दूर रहना, विशेष करके वो क्या होता है शराब या क्या था? मत इसके फेर में इसको छूना मत, इस तरह करके अपना जीवन निर्वाह करके, और पश्चिम की हवा ना लगे डाइवोर्स की, इससे भी बचना। एक बार सबके
माइक माइक
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय।
इसे भक्ति नहीं है, वो तामसिक रूप में करते हैं, शास्त्रीय नहीं है। किसको कहते हैं थोड़ा संक्षेप में बतलाते हैं। जब अन्य अभिलाषता से, जब अपने तन से मन से वचन से इसके अतीत भावना से आत्मा से संपूर्ण रूप से कई धारावा के विच्छिन्न गति से जब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो इसको भक्ति कहते हैं। क्या कहा मैंने, जब तन से स्त्री पुरुष का सन्यासी और गृहस्थ का कोई भेद नहीं, मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन ईसाई का भी भेद नहीं, सबके लिए एक ही डिविशन है, हमारा आराध्य देव कौन है? प्रेम है, कृष्ण स्वयं है प्रेम। तो इसको पाने का उपाय क्या, इसी को बतला रहे, जब तन से मन से वचन से हमारी भावनाओं से इसका तृप्त आत्मा से जबकि अभिच्छिन्न गति से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही कृष्ण की भक्ति होती है तो उसको भक्ति कहते हैं। इसमें और एक कहा गया, अनुकूलेन कृष्णानुशीलन, कृष्ण की प्रसन्नता ही भक्ति नहीं है, इसमें व्याप्ति अव्याप्ति का दोष है, सरल शब्दों में ये दोष है, कृष्ण को रुलाना भक्ति है कि नहीं, यही पर कुछ समझने की बात। यहां पर अव्यक्ति मालूम होता है। यशोदा जी कृष्ण को मारती हैं, मारती नहीं, रखिया दिखलाती हैं, बांध देती हैं ओखल से और बेंत दिखलाती हैं, मारूं हाथ पकड़ कर। कृष्ण रो रहे हैं, तो कृष्ण को रुलाना भक्ति है, रुलाना भक्ति नहीं है। किंतु ये देखा जाता है कि वो जो बांध रहा है, कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है। कृष्ण पीछे ऐसा बिगड़ न जाए हमारा बेटा, चाहे ब्रह्म हो चाहे जो हो, इसकी आदत खराब न हो, घर घर में चोरी न करे, घर में मक्खन जमाती है स्वयं और वो मटकी को फोड़ देता है और कुछ बंदर बंधु का कार्य करता है, इसलिए लठिया लेकर के उसको शासन कर रही है परब्रह्म को। वो परब्रह्म जो कोई हो, हमारा बेटा भी है, अब इसको शिक्षा दो। उद्देश्य क्या? शिक्षा दो। कहती है इसी तरह से यहां पर उलाना उनका उद्देश्य नहीं, उनकी सेवा उद्देश्य है। कृष्ण अपना कपड़ा गंदा कर लिया, यशोदा माँ पी करें, अब हम गोदी में नहीं, दूध नहीं, और कृष्ण मचल रहे हैं, रो रहे हैं, मिट्टी में मिल रहे हैं। तो ये मालूम होता है भक्त ने, किंतु यही भक्ति है। चारों मुष्टिक से कृष्ण लड़ रहे हैं और उनको बड़ा आनंद आ रहा है। चारों मुष्टिक किस लिए लड़ा है? कृष्ण को मारने के लिए। किंतु कृष्ण को आज वीर रस आस्वादन हो रहा है। ये भक्ति नहीं है कृष्ण का प्रसन्न होना। कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं यद्यपि, किंतु उसका उद्देश्य है मारना। इसको इस रूप में समझ। और संसार की कोई भी अभिलाषा संसारिक न हो, अपने स्वार्थ के लिए परमार्थिक भी कोई इच्छा न हो, और हमारी भक्ति ज्ञान ज्ञान कर्म योग तपस्या के अधीन न हो। इस चीज को थोड़ा सा अच्छी तरह से समझने के लिए और एक उदाहरण देकर के बतला। रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी राम के साथ में वनवास में गए। घूमते घामते चित्रकूट में पहुंचे। भरत शत्रुघ्न निगाल में थे, आए सुना। उन्होंने कहा जो मैं राज्य पद नहीं हूं। वशिष्ठ जी ने समझाया सपने, राम को मनाने के लिए चले। राम भैया ही यहां का मालिक है, मैं उसका दास हूं। उनके साथ सारी अयोध्या के लोग गए, बड़े बुजुर्ग लोग, कुछ बड़े बूढ़े थर गए और बाकी सब उनके साथ, सारी सेनाएं, तीनों माताएं भी गई। चित्रकूट में पहुंचे, पहले दिन तो थोड़ा सा मिलन हुआ, दूसरे दिन उनको मालूम पड़ा कि महाराज दशरथ सिधार गए हैं, राम राम हा राम कह पुत्र के विरह। फिर उनको रामचंद्र जी ने उनको पिंड दान किया और इसके बाद में सभा बैठी किस लिए भरत आया। उसके पहले महाराज जनक भी आए हैं, वशिष्ठ इत्यादि बड़े गुरुजन गए हैं, बड़े ऋषि महर्षि लोग सब जुटे हैं उस सभा में। रात में भरत जी गया अपनी कौशल्या मैया के पास। मैया देखो मैं जानता हूं तुम आदेश दे देगी तो राम अभी लौट जाएंगे, तो तुम राम को आदेश दो, ये भरत आया है और आपको ले चलना चाहता है अयोध्या में, तुम लौट जाओ। उन्होंने कहा जी मैं कैसे कहूं, वो भी तो धर्म पथ पर अटक गए, उसको अधर्म करने के लिए कहूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, पर क्या मैं अन्याय कर रहा हूं उनको जान के? नहीं, तुम न्याय कर रहे हो, तुम्हारी तरफ से ठीक है, किंतु मैं ऐसा कर नहीं सकता। जब राम तुम अपना पिताजी का आदेश छोड़कर के चले, तो अभी तो मैया है, मैं मैया हूं, किंतु मैया और बाप दोनों का आदेश लेकर के गया, इसलिए अकेले मेरे कार्य से नहीं। निराश होकर के वशिष्ठ जी के यहां गए, बोले गुरुदेव राम आपकी बात टाल नहीं सकता है, इसलिए आपका दी अयोध्या लौट जाए और राज्य अभिषेक करा ले, हम अभिषेक का सब सामग्री लेकर। वशिष्ठ जी बोलिए देखो एक बात है, वो तो ऐसे नहीं लौटेगा, तुम उसके प्रतिनिधि होकर के तुम जंगल में यदि जाओ तो वो लौट सकता है, ऐसा हो सकता है, मैं कहूंगा, प्रस्ताव दूंगा, तो ठीक है मैं जाने के लिए तैयार। किंतु राम इसके लिए तैयार नहीं होंगे, पर वो जानते थे, उन्होंने कहा जब मैं उसे अधर्म करने के लिए नहीं, तो मैं गलत कर रहा, मैंने तुम भी ठीक कर। सुनैना जी के पास गए, जैसे जरा जनक जी को कह देना, वही सभा का गाइड करेंगे और वही निर्णय देंगे। ठीक है, उन्होंने उनसे कहा सीता पर ख्याल रखना, तुम्हारी सुकुमार सीता बनवन में डोलेगी, राक्षस सब आएंगे, उत्पात करेंगे, तुमको ये अच्छा लगेगा, इसलिए कह देना ही उचित है जो लौट जाए। जनक जी ने कहा जो कमाएंगे भगवान वही कहूंगा। फिर दूसरे तीसरे दिन सभा जुटी और सभा में ऋषि लोग एक तरफ में बैठे, एक तरफ में रामचंद्र जी बैठे, लक्ष्मण सीता, और एक तरफ में अयोध्या पूर्ववासी माताएं और सब भरत लोग बैठे। वशिष्ठ जी ने कहा रघुकुल पर बड़ी भारी विपत्ति आई है, कोई भी समझाने वाला नहीं है इसको, क्या करना चाहिए और नहीं। अब आप ही इनके पिता हैं, गुरु हैं, भाई हैं, जो कुछ बंधु हैं, महाराज जनक आप तो वेदों के शास्त्रों के सब कुछ जानने वाले हैं, तो आप इनको कुछ बतलाइए जिससे कि इनका कल्याण हो। आप जो निर्देश देंगे ये दोनों भाई मानेंगे, भक्त भी मानेगा और राम भी। उन्होंने कहा जी अच्छी बात है, बस अपने गुरु का ध्यान किया और ध्यान करके बोले देखो मैं देखता हूं भरत का प्रेम है वो प्रशांत महासागर है, इतना बड़ा सागर है, इतना डीप गहरा है कि एवरेस्ट माउंटेन 7 मील प्राय लंबा ऊंचा, वो डूब जाएगा उसमें। भरत का प्रेम महासागर है, प्रेम कोई नियम नहीं जानता, कोई नीति के मेच में वो आबद्ध नहीं रहता, तो ये भरत का प्रेम है। और उधर राम क्या है, वो है एवरेस्ट माउंटेन, उसमें डूब जाएगा किंतु स्पष्ट समर्थ इधर नहीं होगा, समझ रहे हैं, प्रेम की महिमा अधिक है, डूब जाएगा उसमें किंतु फिर भी तस्य मस नहीं होगा हिमालय। देखो मेरी विचार, मेरा विचार यह है कि भरत की जीत हुई और राम इसमें डूब गए, किंतु इसका मतलब और समझो कुछ, भरत का प्रेम ऐसा प्रेम में ये नीति है कि अनीति है ये नहीं देखता। गोपियों से नारद से कहा जाए नारद जी अपने चरण की धूली दे दीजिए, द्वारकाधीश जरा बीमार हैं वो ठीक हो जाए, देंगे? और मैं नरक में नहीं जाना, सत्यभामा रुक्मिणी किसी ने नहीं दिया। अब ब्रज में आए गोपियों से कहा कृष्ण की अवस्था ठीक नहीं है और स्वस्थ हैं, वो किसी भक्त की चरण भूली जाए। साफ जितनी करोड़ों गोपी अपने पैरों को झाड़ झाड़ करके देखो नीति कहां गई, ये नीति प्रेम में नहीं होती। राधिका जी अपने चरणों में महावर लिखवाती हैं कृष्ण से, कृष्ण कृष्ण, और उसकी छाप राधा जी अपने पैरों की छाप कृष्ण पर ब्रह्म के इसमें देते हैं और कहती हैं क्या गोपियां, धोत बाहर काला भीतर का लंपट शिरोमणि, झूठ और चोर शिरोमणि, मतलब ऐसे कोई ब्रह्म को कहेगा यहाँ का नीति है, प्रेम में नीति नहीं। तो भक्त का प्रेम ऐसा महासागर है प्रेम का, उसमें राम की नीति और धर्म की नीति डूब जाए, मर्यादा डूब जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, और कृष्ण है क्या, लीला पुरुषोत्तम, इनकी माधुरी अलग विचित्र है। तो ठीक, तो वहां भरत की जीत हुई, किंतु जीत तो हुई किंतु प्रेम की भी मर्यादा है। क्या प्रेम में ये मर्यादा है कि जो आराधक है वो अपने आराध्य इष्ट वस्तु को किसमें प्रसन्नता हुआ वही काम करेगा। आया समझ में, भरत जी इष्ट आराधक हैं, उनको मनाने के लिए आए हैं, भक्त हैं, और भक्त का इष्ट देव कौन है, यहां पर राम है। तुम भरत जी जा करके उनसे पूछो राम क्या चाहते हैं, किसमें प्रसन्न होंगे, ये भक्ति है। तुम अपने विचार से कर रहे हो, या रामचंद्र जी जाएंगे तो हमें सुख होगा, प्रजाओं को सुख होगा, इसमें राम को सुख होगा कि नहीं, ये भक्ति है। भरत जी की आंखें खुल गई, वो महाराज जनक के चरणों में गिर गए, आप मेरे गुरु हैं, मेरी आंखें खुल गई, अब तक मैं अंधा था, प्रेम में अंधा था, अब मैं समझा ये इष्ट देव किस विषय में सुखी रहते हैं, ये भक्ति है, मैंने ये देखा नहीं था, मैं अपना सुख स्वार्थ देखता कि इसमें भगवान प्रसन्न होंगे, राम प्रसन्न होंगे, किंतु मैं वो होंगे कि नहीं ये विचार नहीं। जाओ राम से पूछो राम क्या चाहते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, देखो भरत हमारे जनक जी ने तो ये कह ही दिया कि तुम्हारी जीत हुई, लोग बड़े प्रसन्न हुए, किंतु कहते हैं कि देखो मैंने राज्य ले लिया, हमारा अभिषेक हमने ले लिया, अयोध्या का मैं राजा ऐसे हूं, एक बात करनी होगी तुम्हें, तुम जाओ हमारे प्रतिनिधि होकर के 14 वर्ष तक राज संभाल करके देखो, मेरे प्रतिनिधि होकर के मैं राजा हूं किंतु, और मैं 14 वर्ष के बाद एक सेकंड की दूरी नहीं करके आ जाऊंगा। अच्छा ठीक, मैं प्रतिनिधि होकर के, एक मिनट की विलंब हो गई यदि तो अयोध्या में हमको तुम नहीं देख, मैं जल मरूंगा। अच्छा ठीक कह जाओ, इसलिए भक्ति क्या है समझो, शंकर जी का ये बजा चौकट दबाते हैं, इसलिए एक से मैं 1.5 किलो लड्डू आपको भोग दूंगा, हमारा बेटा वो करोड़ दूर हो जाए, वो मिस्टर इंडिया हो जाए, हमारी लड़की मिस यूनिवर्स हो जाए, हमारा ये दुख दारिद्र दूर हो जाए, ये भक्ति नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही भगवान की भक्ति होनी चाहिए, तभी ये भक्ति होगी। इसलिए भगवान का नाम संकीर्तन करो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण कृष्ण कहो राधा जी को प्रसन्न करने के लिए। और ये राम राम इसके लिए, ये मत सोचो ये अलग अलग नाम है, कृष्ण के ये सभी नाम है, हरे माने समझो जो कृष्ण के भी चित्त को हरण करने वाले, राम माने राधा जी के हृदय में रमण करने वाले, वहां पर दासत्वी नाम नहीं हूं। इसलिए ये सब विचार करके एकनिष्ठ होकर के भजन करो, तुम लोगों का सबका कल्याण हो, समय बहुत बीत चुका है, इसलिए आज पहले तभी समाप्त करता हूँ। भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, दिन में रात में सवेरे शाम दोपहर को भोजन करके न भोजन करके चलते फिरते उठते बैठते बिना माला का भी कुछ स्वर से धीरे सर से गान के रूप में ताली बजाते हुए जैसे हो नाम। इसलिए हाँ एक बात है, प्याज लहसुन मांस मछली मत खाना, ये तामसिक चीजें हैं, इनसे दूर रहें, विशेष करके वो क्या होता है शराब या क्या मत, इसके फेर में इसको छूना मत, इस तरह करके अपना जीवन निर्वाह करते और पश्चिम की हवा ना लगे डाइवोर्स की, इससे भी बचना।
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय।